Good evening and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do not forget to prefix 011 before these numbers if you're calling from out of Delhi or from your mobile phone. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
Namaskar, Market Mantra mein aapka swagat hai, jahan hum taza aarthik khabrein aap tak laate hain. श्रोताओं, आज सोमवार है और हर सोमवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्नों को सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। इस कार्यक्रम में व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर्स हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। दिल्ली से जो भी बाहर के श्रोता हमें कॉल कर रहे हैं वो इन नंबर से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। तो श्रोताओं, आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए और चर्चा करने के लिए हमारे समक्ष स्टूडियो में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार। दीपशिखा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत अभिनंदन।
धन्यवाद।
चर्चा आगे बढ़ाएंगे श्रोताओं, दीपशिखा हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं हेडलाइंस।
इंडियन स्टॉक मार्केट सेंसेक्स एंड्स विद मार्जिनल गेन्स, निफ्टी क्लोजेस फ्लैट, मेजर एशियन इंडिसेस डिस्प्ले मिक्स्ड ट्रेंड एंड इंडिया एम्स टू अचीव $1 trillion एक्सपोर्ट इन करंट फाइनेंशियल ईयर, सेज कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में मामूली बढ़त, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी सपाट बंद हुआ। प्रमुख एशियाई शेयर सूचकांकों में मिला जुला रुख नजर आया और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, चालू वित्त वर्ष में भारत का लक्ष्य $1 trillion का निर्यात हासिल करना है।
Before we proceed any further, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
और श्रोताओं, अब जान लेते हैं कि आज हमारे शेयर बाजार ने कैसा व्यवहार किया पूरे दिन के अंतराल में। तो घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ खुले, आधे सत्र तक दोनों सूचकांक दबाव में रहे, लेकिन कुछ समय बाद उनमें सुधार नजर आया। सत्र के दौरान रिकवरी भी हुई और अंततः बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में 1100 अंकों से अधिक का उछाल आया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में मुनाफा वसूली के कारण 300 से अधिक अंकों की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 77 अंक बढ़कर 75,315 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 6 अंक की मामूली बढ़त के साथ 23,650 पर आ गया। हालांकि विस्तृत शेयर बाजार में गिरावट देखी गई। मिड कैप 100 0.1% से अधिक लुढ़का, जबकि स्मॉल कैप 100 में लगभग 1.3% की गिरावट दर्ज की गई।
So benchmark domestic equity indices recovered from early losses and ended marginally higher today. The Sensex rebounded over 1100 points, while the Nifty recovered more than 300 points from the day's lows on value buying. The Bombay Stock Exchange Sensex added 77 points to close at 75,315, while the National Stock Exchange Nifty rose slightly by 6 points to settle at 23,650. However, the broader market on the National Stock Exchange ended lower. The mid-cap 100 dipped over 0.1%, while the small-cap 100 lost almost 1.3%. Earlier, the markets opened with steep losses following weak global cues. Both indices remained under pressure during the first half of the session before gradually trimming their losses.
सेंसेक्स में शामिल 30 में से 17 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। शीर्ष प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयर्स में टेक महिंद्रा लगभग 4.5%, इन्फोसिस 2% से अधिक और भारतीय एयरटेल के शेयरों में लगभग 1.8% की बढ़त दर्ज की गई। वहीं खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों की अगर बात करें तो टाटा स्टील 3.2%, पावर ग्रिड 3% से अधिक और SBI के शेयरों में लगभग 2.5% की गिरावट देखी गई।
And in the sectoral indices of the Bombay Stock Exchange, 20 out of 25 sectors ended In the negative territory, among the top losers, PSU banks shed 1.8%, auto lost over 1.7%, and consumer discretionary dropped almost 1.3%. In the top gainers, focused IT rose over 2.5%, IT climbed more than 1.9%, and healthcare added 0.2%. Overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative as shares of 3,034 companies declined, 1,264 advanced, and 194 remained unchanged.
और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 38 पैसे कमजोर होकर 96 रुपए और 35 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ. उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 99.21 पर चल रहा था. दीपशिखा, जिस तरीके से बाजार की गतिविधियां जो कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से इतनी ज्यादा प्रभावित है बढ़ रही हैं, इसे आप अब क्या अवलोकन करती हैं? आने वाले समय में बाजार की दशा और दिशा किस तरफ रहेगी?
देखिए, इस समय जो स्थिति है बाजार की, तो भारतीय बाजार को हम देखें तो 3-4 मुख्य जो फैक्टर्स हैं, एक तो तेल, क्रूड ऑयल किस दिशा में जा रहा है, रुपया किस दिशा में जा रहा है, मॉनसून की दशा कैसी रहेगी. अगर मैं आपसे बोरो करती हूँ तो ये 3 प्रमुख फैक्टर्स हैं. दूसरा कि विदेशी निवेश कितना आ रहा है, इन्फ्लोज कितने आ रहे हैं, बहुत. और वो ये जो इसमें से फैक्टर्स हैं, जैसे तेल हो गया या विदेशी निवेश कितना आ रहा है, रुपया जो है, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, इनके तार जुड़े हुए हैं. जो इस समय संकट है वेस्ट एशिया में, जो लड़ाई चल रही है, जिसमें बहुत अनिश्चितता बनी हुई है कि किस दिशा में वो जाएगी. वहाँ कुछ युद्ध विराम अभी चल रहा है, बहुत एक्टिव लड़ाई नहीं हुई है कल की बमबारी के बाद, लेकिन क्या विराम हो गया है, क्या कोई समझौता हो सकता है, ऐसी आशा होती है, बढ़ती है, जताई जाती है. तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये इस मार्केट को ड्राइव करेंगे. भारतीय अर्थव्यवस्था का इस दिशा में कैसा परफॉर्मेंस रहता है, क्योंकि मॉनसून को लेके भी थोड़ी अनिश्चितता आ गई है, तो ग्रामीण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, इसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, ये जो है ये ड्राइविंग फैक्टर्स रहेंगे. लेकिन शॉर्ट टर्म में जो है वेस्ट एशिया क्राइसिस जो है, जो जियोपॉलिटिकल संकट है, ये जब तक इसका कोई समाधान नहीं होता है, यहां पर कोई समझौता नहीं होता है, तब तक ये अनिश्चितता, उतार चढ़ाव ये बना रहेगा.
Well, Deepshikha, you mentioned about the West Asian crisis, geopolitical situation, so on and so forth. Now, if we look at the Trump visit to China, there was really, you know, the world all over, all the economies were really looking forward to the visit. Something might come out of it, as we are given to understand that China mostly was kind of sitting on the sidelines, if you can say, in the West Asian crisis, also with the
yes, absolutely quiet
with the Russia-Ukraine conflict as well. Now, with almost nothing coming out of the Trump visit to China, we saw that it was mostly an exercise in futility, if you can say that. So does that also have a role to play in the tepid market kind of movements that we saw over the past 3-4 sessions? Now, of course, today there was just very marginal uptick. So is that a factor at all?
निश्चित. दीपशिखा के पास हम लौटेंगे इस सवाल का जवाब लेने के लिए, लेकिन उससे पहले हमारे साथ दिल्ली से अमित झा जुड़ रहे हैं. अमित जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
नमस्कार सभी को.
नमस्कार.
प्रश्न ये है कि अभी जो हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड में बन चुके थे और हम जापान को ही बीट करने वाले थे, थर्ड लार्जेस्ट बनने वाले थे, बट सर मैडम कि अभी हम दोबारा से 6th पोजिशन पे आ गए हैं, तो ये हम सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं फोर्थ पे, और हम फिर 2047 तक विकसित डेवलप कंट्री कैसे बन सकते हैं? धन्यवाद.
अमित जी, बहुत ही अच्छा सवाल. देखिए, इस समय देश के सामने काफी चुनौतियां हैं, लेकिन ये चुनौतियों से अगर देश उबर पाता है और अपनी विकास दर को गति दे पाता है, तो हम जरूर 2047 में विकसित देश बन पाएंगे.
बिल्कुल. गाजियाबाद से हमारे साथ अनिल जुड़ रहे हैं. अनिल जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
गुड इवनिंग मैम.
गुड इवनिंग.
हेलो,
जी अनिल जी, जी अनिल जी नमस्कार, बताइए आपका सवाल।
मैम मेरा सवाल ये है, हेलो
जी जी, आवाज पर्याप्त आ रही है, अपना सवाल पूछिए।
हाँ मैडम, मेरा 28 फरवरी को जीवन श्री पॉलिसी मैच्योर।
अनिल जी अनिल जी अनिल जी एक मिनट, आप थोड़ा अपना रेडियो अगर आपने ऑन कर रखा है तो उसे आप या तो बंद कर दें या वॉल्यूम कम करें उसका।
मेरी जीवन हेलो, अब आवाज आ रही है आपको?
जी जी
बताएं,
आवाज आ रही है आपको?
हाँ जी हाँ जी, आप पूछे अपना सवाल।
28 फरवरी को जीवन श्री पॉलिसी मैच्योर हुई थी जिसमें मुझे अराउंड 20 लाख मिला था और मैं सोच रहा था कि उसको शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में डालूं, लेकिन उसी समय वॉर हो गया तो मैंने उसको जो है सीनियर सिटीजन, 64 ईयर, तो उसको सीनियर सिटीजन में डिपॉजिट कर दिया जिसमें मुझे 8.2% आता है और जो उसका 15,000 या 14,000 क्वार्टरली आता है उसको मैं म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर कर रहा हूँ। क्या ये पॉलिसी ठीक रहेगी?
आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया अनिल जी, क्योंकि काफी अनिश्चितता बनी हुई थी बाजार में, आपने एक रिस्क ना लेकर के एक जो सरकार की वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अच्छी योजना चल रही है जिसमें आपको टैक्स फ्री रिटर्न मिल जाता है उसमें आपने निवेश किया, तो एक सूझबूझपूर्ण निर्णय था आपका।
लौटते हैं निश्चित आपके सवाल पर, आप पूछ रहे थे।
यस दीपशिखा, वी आर टॉकिंग ऑफ द ट्रंप विजिट टू चाइना, एज वी आर गिवन टू अंडरस्टैंड दैट यू नो एवरीबडी यू नो राइट फ्रॉम इंडिया टू द एशियन इकोनॉमीज टू द यूरोपियन इकोनॉमीज एंड ऑफ कोर्स द यूएस इकोनॉमी एज वेल, दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग कमिंग आउट ऑफ इट, स्पेशली गिवन द वेस्ट एशियन क्राइसिस हैपनिंग राइट नाउ एंड ऑफ कोर्स फॉर द पास्ट 3-4 years नाउ, इट्स फोर्थ ईयर रनिंग आई गेस with the Ukraine Russia conflict also happening now with the closure of Strait of Hormuz and all so on and so forth, we have seen how it has crippled the world economy. Now with nothing, almost nothing coming out of the Trump visit, it almost seems like it was a you know kind of a pleasure trip happening over there. So
Nishant, you have to see this engagement or this visit in the backdrop of the developments that happened. If you see the frostiness that had developed, the kind of tensions that were there between the two nations, they were exchanging, you know, a lot of harsh words. So in that scenario, a visit definitely tries to overcome that mistrust and, you know, that...
Which was very much palpable, actually, Deepshikha. If you look at the, you know,
exactly.
You talk of mistrust and...
So, the fact is that
issues.
A presidential visit has happened. There was a summit between the two leaders. Probably we could see, you know, movement in their engagement, movement in their relationship going forward. Because US-China, they have a deeper engagement at different levels. Because...
Right.
Of trade, because of investment, a lot of American companies are present in China. So I think this visit was important from that perspective. But of course, I think everyone in the world had a lot of expectations from the visit, which of course did not come true or which did not come about, and which is why I think there is a disappointment that nothing concrete happened.
We'll come back to that. And in the meanwhile, we are joined in by Rajesh from Delhi. Rajesh.
Market Mantraji, Namaskar ji. ये छह महीने से करीब आईटी सेक्टर में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, उभर पाएगा कि नहीं आने वाले समय में?
नमस्कार राजेश जी, आपका सवाल जो है वो आज काफी निवेशकों के मन में है और बहुत सारे लोग जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके मन में है। इस क्षेत्र का परफॉर्मेंस जो है अगर आप देखें, और दुनिया भर में इसकी बात हो रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जैसे यूएस में वहां पर वैल्यूएशंस बहुत बढ़ गए हैं, वहां पे जो भी आईटी या टेक क्षेत्र से जुड़ी कंपनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रही है उनके वैल्यूएशंस बहुत बढ़िया हैं, उनका परफॉर्मेंस जो है स्टॉक मार्केट्स में बहुत बढ़िया है। हमारी कंपनियों ने भी शुरू किया है लेकिन अभी वो काफी पीछे हैं इसमें, अभी उनको उस स्तर तक आने में थोड़ा वक्त लगेगा और वही निर्भर करेगा आगे की ये ट्रैजेक्टरी कैसी रहेगी। तो उनका परफॉर्मेंस आगे इस क्षेत्र का काफी हद तक इस पर निर्भर करता है कि हम एआई का एडाप्टेशन जो है हमारे यहाँ किस हद तक होता है और टेक कंपनियां कितना उसमें घुस पाती हैं।
मुंबई से हमारे साथ हसमुख जुड़ रहे हैं। हसमुख जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
नमस्ते मार्केट मंत्र।
नमस्कार।
नमस्कार हसमुख जी,
मेरा क्वेश्चन ये था कि यहाँ से अगर एक साल के लिए होराइजन के ऊपर इंडिया में कौन से सेक्टर्स ग्रो कर पाएंगे आपके हिसाब से? बिकॉज अभी आपने आईटी के बारे में बताया तो वहाँ एआई का फियर है,
मौलिक सवाल,
डॉलर्स का, वी ऑल नो व्हाट हैज हैपेंड
जी,
सो व्हाट आर योर व्यूज, व्हिच सेक्टर्स वी शुड चूज?
हसमुख जी देखिए, कुछ एक क्षेत्र हैं जिनसे उम्मीद की जाती है, जैसे कि कमोडिटी साइकिल अगर आप देखें तो वो ऊपर जा रहा है, तो कमोडिटी क्षेत्र जो है, मेटल की डिमांड जो है सब जगह बहुत बढ़ रही है, उससे जुड़े क्षेत्र, डिफेंस से जुड़े क्षेत्र, क्योंकि लड़ाई चल रही है अब सब जगह जो है, एक डिफेंस के जो क्षेत्र है उनसे जुड़ी हुई कंपनीज जो है उनकी परफॉर्मेंस उम्मीद की जाती है कि वो बेहतर होगी। बैंकिंग का क्षेत्र, उसमें क्योंकि ब्याज दरों के बढ़ने की बात है, हालांकि ये बहुत जल्द नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ने की उम्मीद है, हो सकता है कि कुछ समय में, मीडियम टर्म में अगर आप देखें तो, और बैंकिंग क्षेत्र ने अपने एनपीएस पर काफी हद तक काबू पा लिया, तो उनका परफॉर्मेंस, उस क्षेत्र का परफॉर्मेंस भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि बेहतर हो।
इनफैक्ट इफ आई मे ऐड टू दैट दीप शिखा, you know, the pharma sector is
not pharma, of course, yes. Pharma sector.
With the growing strains that we are seeing the world over, we saw what happened in Africa. Yeah. And also, you know, many other kind of, which are detrimental to health coming up, you know, like big. So pharma sector, another one.
Pharma sector is another one to watch out for.
Amit from Mumbai. Amit, welcome.
Yeah, thank you, sir. सर मेरा सवाल था एक्सपर्ट से कि अभी फिलहाल जो इंटरनेशनल माहौल है और इस कॉन्टेक्स्ट में मोदी जी ने जो आह्वान किया है सब हमारे देशवासियों को भी गहना मत खरीदो वगैरह, और कुछ हम करोड़ों अमाउंट जो है इंटरनेशनल मार्केट उन्होंने हमारे यहाँ से विड्रॉ की है मार्केट से, शेयर मार्केट से, तो इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना कितना सही रहेगा, आपका इसमें ओपिनियन क्या है बताइए।
अमित जी, प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है, प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है क्योंकि देश के सामने एक, हम सोना हमारे यहाँ पर नहीं होता है माइन, हम बाहर से उसको आयात करते हैं, कच्चा तेल हम आयात करते हैं, और हमारे सामने जो है एक समस्या है क्योंकि तेल का दाम बहुत बढ़ गया है, हम उसके लिए फॉरेक्स इस्तेमाल करें, तो प्रधानमंत्री का आह्वान इस दिशा में था। और जो इस समय वैश्विक स्थिति है वो चुनौतीपूर्ण है क्योंकि लड़ाई चल रही है, उसकी वजह से दुनिया भर की जो स्टॉक मार्केट्स हैं उन पर प्रेशर है, हमारे देश की भी स्टॉक मार्केट पर प्रेशर है, तो जाहिर सी बात है कि आप जो है बहुत ही सिलेक्ट निवेश करना पड़ेगा कि जो आपको आगे रिटर्न्स भी दे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अच्छे कीमत पर, क्योंकि वैल्यूएशंस गिर गए हैं, वो अभी हैं, मिल रहे हैं, तो आप ये देखिए कि वो मजबूत कंपनियां हो, बैलेंस शीट उनकी मजबूत हो, और जो क्षेत्र आपको लगते हैं कि जो आपको मीडियम से लॉन्ग टर्म जो है आपको अच्छा रिटर्न दे पाएंगे, आप वो शेयर्स ढूंढिए और उनमें निवेश कीजिए।
बिल्कुल, श्रोताओं दीपशिखा जी की राय महत्वपूर्ण है, और हम अब आगे बढ़ते हैं एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ। आज प्रमुख एशियाई शेयर सूचकांकों में मिला जुला रुख देखा गया। हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 1.1% नीचे बंद हुआ, जापान का निकी 1% गिरा, और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स में 0.1% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं दूसरी ओर दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.3% बढ़ा, और सिंगापुर के स्ट्रेट टाइम्स इंडेक्स में 0.1% से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई। इस बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को दी गई चेतावनी के कारण निवेशकों की चाल में जरा सतर्कता नजर आई। प्रमुख यूरोपीय सूचकांकों की अगर बात करें तो आज यहां भी मिश्रित रुझान ही देखने को मिला। लंदन का फुटसी लगभग 0.4% ऊपर, जर्मनी का डैक्स 0.2% बढ़ा, जबकि फ्रांस का कैक अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक 0.6% से अधिक गिरकर कारोबार करता नजर आया।
And in some other news, Prime Minister Narendra Modi and Norwegian Prime Minister Jonas Gahr Støre held restricted and delegation-level talks in Oslo today. In a joint statement, the two leaders declared the upgradation of India-Norway relations to green strategic partnership.
आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी.
Both leaders also emphasized expanding collaboration in high technology, artificial intelligence and startups to make the partnership future ready. Prime Minister Modi said that India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement, which came into effect last year, serves as a blueprint for shared progress and prosperity between India and Norway.
श्रोताओं, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री ऑल्फ क्रिस्टर्सन से द्विपक्षीय वार्ता की. श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस यात्रा में कई महत्वपूर्ण नतीजे सामने आए हैं जिससे द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिलेगी. पेश है एक रिपोर्ट.
इस यात्रा के दौरान छह प्रमुख उपलब्धियां सामने आई. पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है. दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना. इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी AI कॉरिडोर यानी CTAC का विस्तार किया गया. तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिक केंद्र स्थापित करने पर सहमति. ये केंद्र AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा. चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना करने का लक्ष्य तय करना रही. पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन SME और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास. छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही. इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी LEADIT के तीसरे चरण की घोषणा करी. साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन.
और ताल के शहर से भोपाल से हमारे साथ शंकर जुड़ रहे हैं. शंकर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको. मैडम, मेरा सवाल है, ये हमारा इंटरेस्ट वेस्टर्न इकोनॉमीज और अमेरिकन इकोनॉमीज में ज्यादा है क्योंकि हमें वहीं से टेक्नोलॉजी और कैपिटल मिलती है, और हमारी दिक्कत ये हो रही है कि हमारे FII सब निकले जा रहे हैं, तो उनको लुभाने के लिए क्या किया जा सकता है सो दैट इट स्टेबिलाइजेस द मार्केट. बिकॉज अवर इंटरेस्ट लाइज नॉट इन डिक्टेटोरियल कंट्रीज और कम्युनिस्ट कंट्रीज, बट इन द वेस्ट economies which has more benefit for us. क्या लोग हमने काम किया जा सकता है उनके आने के लिए. थैंक यू.
शंकर जी, विदेशी निवेश जो है हमने देखा है बाजार में काफी हद तक उस पर असर आया है क्योंकि वैश्विक संकट ये जो मंडरा रहा है हमारे सामने, और उस पर सरकार जो है काफी काम कर रही है. हमने देखा है पिछले समय में भी मार्केट रेगुलेटर द्वारा भी फ्रेमवर्क जो है उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत काफी चीजें की गई. तो सरकार बराबर नजर बनाए हुए है और रुपए पर भी नजर बनाए हुए है रिजर्व बैंक, और उसके लिए काफी जो है पॉलिसी मेकर्स ध्यान रख रहे हैं, मेजर्स जो है वो लिए जा सकते हैं ताकि देश में भारत से ज्यादा जो है विदेशी निवेश आए बाजार में भी और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी.
और कुछ खबरों में, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत का लक्ष्य सामूहिक रूप से $1 ट्रिलियन का निर्यात हासिल करना है और अगले 5 साल में इसे $2 ट्रिलियन तक लेकर जाना है. आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है. श्री गोयल ने कहा कि इस साल का निर्यात लगभग $863 अरब तक पहुंच गया, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 5% ज्यादा है. श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें.
Deepshikha, coming back to Prime Minister's visit to the Nordic countries, 5-nation tour, of course, you know, talking of the third and fourth leg, that is Sweden and Norway today. We just heard what he addressed in the presser in Norway. How significant do you feel or do you see this visit as, given the uncertainties and the crisis that, not just India, but the world economy is facing? That is one. And of course, with the agreement signed and India kind of elevating its partnership, especially with Sweden, to a strategic level, and also with Norway to the green strategic level. Now, how important and significant do you feel this agreement, and the tour of Prime Minister to the five nations in all?
If you look at, this tour, and there's been, wider discussion on why the Prime Minister traveled, despite, sort of giving this clarion call that people should not travel abroad. But if you look at the selection of countries, even to UAE, he's secured an agreement there for definite supply. He is in Norway today. Norway has, world's largest sovereign wealth fund. And we have to encourage foreign investment in the country. So I'm sure the whole idea is to encourage foreign flows, to ensure deeper markets for our exports and technology for our, companies and manufacturers. So he's gone, and he's in fact, in his address, if you see, he's spoken about these things. It has been a very, very focused visit.
Absolutely.
So it has to be seen from that.
Even as you mentioned this, the agreement between India and Norway, and Prime Minister in his statement in the press said that 100 billion investment would be coming in the coming days, and 1 million jobs would be created.
Over the coming years. It's. I think we just have to see the results of this visit unfold in coming days.
Moving on to crude now, the global crude oil prices rose today. The Brent crude was trading 1.2% up at $110.57 per barrel, while the West Texas Intermediate crude was trading over 1.2% up at $106.73 per barrel when reports last came in. And onto the bullion market, in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 0.3% up at 1,59,620 rupees per 10 grams, while silver was trading 0.9% higher at 2,74,250 rupees per kilogram a short while ago.
Multi-commodity exchange mein June anubandh wala sona 0.3% badhkar 1,59,050 rupees prati 10 gram par tha, aur July anubandh wali chandi 1.6% ghatkar 2,76,278 rupees prati kilogram par karobar kar rahi thi. Deepshikha, ek bahut hi sanshipt tippani mein sone aur chandi ke bhav par aapse chahungi.
देखिए, सोना और चांदी हमने देखा है पिछले वर्ष काफी उतार चढ़ाव रहा है, गिरा भी था उसके बाद.
निवेशकों को कहना है कि चढ़ाव ज्यादा रहा है.
चढ़ाव तो रहा ही है, गिराव आया था, लेकिन यही है कि अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सोना तो एज एक निवेशक के बतौर रहना चाहिए.
क्या ये सही समय है?
सही समय तो प्राइस को देखने के लिए, क्योंकि अभी प्राइसेस ऊपर ही चल रहे हैं.
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दीपशिखा कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए.
धन्यवाद.
थैंक यू दीपशिखा. एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन. Indian stock market Sensex ends with marginal gains. Nifty closes flat. Major Asian indices display mixed trend. And India aims to achieve $1 trillion exports in the current financial year, says Commerce Minister Piyush Goyal. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.